نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمد لله ہمارا تربیتی سیشن کا کورس کا سیشن ہے اور الحمد للہ یہ سیشنز اسی لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی کچھ تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ تربیت ہوتی رہے جیسے کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے تو اب انشاءاللہ تین سیشنز اور رہ گئے ہیں پھر رمضان ہے اور اس بار ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تھوڑی سی یاد کو یعنی تازہ رکھیں اتنا تو نہیں ہو سکا مگر کچھ تھوڑا سا اس کو ریفریش کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس تربیتی سیشن کے ذریعے اس کو تھوڑا ریفریش رکھیں اور میں تو جب بھی اس سیشن کو کرنے لگتی ہوں تو مجھے وہی دن یاد آ جاتے ہیں جو ہمارے رمضان میں گزرے تھے تو اب بات یہ ہے کہ پچھلے رمضان جو ہم گزارتے رہے ہیں تو جب وہ اتنا پیارا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تب ہم اپنا مطلب اپنی تربیت شروع کرتے ہیں ایک دھکا سٹارٹ لگنے لگتا ہے ہمیں اور چونکہ ہم بہت اتنے فارم میں نہیں ہوتے تو سپیڈ پکڑتے پکڑتے بھی ہمارے آدھا رمضان گزر جاتا ہے اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں گے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں تاکہ جب وہ مبارک مہینہ آئے گا وقت آئے گا تو ہم پوری تیاری سے ہوں گے نہ تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے میں کوئی مشقت ہوگی نہ ذکر کرنے میں کوئی ہمیں کچھ بھولے گا اور نہ ہم نمازوں میں تھکیں گے تو ذرا پہلے سے ہم تیاریاں شروع کر دیں نا تو جتنی کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کی تیاریاں اتنی پہلے سے شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا شادیوں کی تیاریاں سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں تو اتنا بڑا ایونٹ آنے والا ہے اور اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے وہ دن اور پھر ہم اس کی تیاری نہ کریں ایسے ہی بیٹھے رہیں تو ہم تو وقت گنوا دیں گے نا تو اس لیے ہم نے ابھی سے خود کو ٹرین کرنا ہے جیسے اگر ہم ابھی سے ہفتے میں مثلا دو روزے رکھ رہے ہیں تو رمضان میں ایک دم پہلے روزے پہ ہمارے سر میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ اسی طرح قرآن بھی اگر ابھی سے ہماری عادت ہے صبح کو فجر پہ پڑھنے کی تو اس وقت پھر ہمیں کیا مشکل ہوگی بلکہ اور رواں ہو چکے ہوں گے اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے قیام کو لمبا کریں گے نمازوں میں تو اس وقت پھر زیادہ ایک دم لمبا کھڑے ہونے سے ہمیں کوئی زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ ہم ایک ایک چیز کی انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے آج جس بارے میں بات کروں گی آپ سے وہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ذکر کا ہم نے خود کو ایسا عادی بنا لینا ہے کہ ہمیں بالکل محسوس نہ ہو اس وقت بوجھ نہ لگے اس زبان سے ایسے پھسلنا چاہیے جیسے یعنی کوئی چکنے پتھر سے آپ دیکھتے ہیں پانی پھسلتا ہے اس طرح ہماری زبان سے جاری ہو جائے ذکر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ایسی عادت پھر پڑ جائے گی نا کہ رمضان میں ہمیں کوئی بالکل محنت نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں سے پہلے تیار ہوں گے جو ابھی پلان ہی کر رہے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے اب جب انشاءاللہ یہ دن قریب آئیں گے تو وہ جو اس سے پہلے کے 10-15 دن ہوتے ہیں اس میں اتنے لوگ بلاتے ہیں کہ آپ رمضان پہ آ کے درس دیں اور یہ تو ٹھیک ہے اس وقت بھی انشاءاللہ پلان کر سکتے ہیں مگر بات وہ ہے کہ اس وقت اتنی ابھی تھوڑا ٹائم رہ چکا ہوتا نا کہ لوگوں کو کچھ بتانا یا ان کی عادت بنوانا بہت مشکل ہوتا ہے تو ذرا پہلے سے اگر ہم پلاننگ شروع کر دیں نا یہ بہت بڑی یعنی ہمیں ایک سعادت نصیب ہونے والی ہے بہت خوش نصیبی کی ایک چیز ہے جو ہمیں ملنے والی ہے ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ اگر ہم وہ پا لیں تو کیوں نہ इतनी पहले से तैयारी करें कि हम बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हों, फिर बस जैसे वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, आप देखते हैं वार्म अप करते हैं भागने से पहले, तो हम वो वार्म अप अपना मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह ताला। तो आज जो हमने जो बात करनी है ना जिक्र की, असल में अल्लाह ताला के जिक्र के ऊपर इतनी आयात, इतनी अहादीस हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर नहीं भी कुछ हो ना, तब भी अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं हमारे ऊपर कि हमें हर वक्त उसका जिक्र करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहना चाहिए। ये जो कुरान पढ़ना है या नमाज पढ़ना है, ये तो तरीके हैं उसका जिक्र करने के। असल में तो जिक्र जो है ना, वो एक ऐसा फेल है जो दिल से होता है। जिक्र क्या है? याद, अल्लाह ताला को याद करते रहना, उसकी याद दिल में रखना। हदीस में आता है कि तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, यानी जरूर कबूल होती है, और उनमें एक वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज्यादा करता है, कसरत से अल्लाह ताला का जो जिक्र करता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सूरह आले इमरान में हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिहु बिल अशी वल इबकार, कसरत से अपने रब को याद कीजिए, सुबह और शाम उसकी तस्बीह करें। सुबह शाम अल्लाह ताला की हमने तस्बीह बयान करनी, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें याद करते हैं, और जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं तो आप देखें ऐसे लोगों के दिल जो होते हैं वो फिर शैतान की बातों में नहीं आते, और गुमराही से हम बच सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया सूरह मुजादला में कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद से झुक जाएं। और एक और जगह पे जैसे आता है कि इन पर शैतान का तसल्लुत हो गया, मुनाफिकों की बात है, बस उसने उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया। ये लोग शैतान का ग्रोह है, खूब समझ लो, शैतान का ग्रोह ही खसारा पाने वाला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालों, तुमको तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से, उसकी याद से गाफिल ना कर दे, जो ऐसा करेंगे वो नुकसान उठाने वाले हैं। तो बार बार हमें कुरान पाक में ये कहा जाता है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। बेशक अल्लाह ताला का जिक्र कुरान भी है, अल्लाह ताला का जिक्र नमाज भी है, अल्लाह ताला का जिक्र के और भी तरीके, मगर हम जिक्र की काफी दफा पिछली सेशंस में भी बात कर चुके हैं, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। आप कोई भी तरीका जिक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह ताला को याद करने के लिए, मगर शर्त यह है कि वो मसनून तरीका हो, अपने तौर पे खुद ही से बनाया हुआ ना हो, खुद ही से घड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। देखिए हम अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं, यानी जैसे एक और हदीस में है ना कि जब बंदा मुझे याद करता है तो जब तक उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं मैं उसके साथ होता हूं, यानी अल्लाह ताला की खास तवज्जो होती है, खास रहमत होती है उसके लिए। तो इंसान जब अकेले में अल्लाह को याद करता है, दिल में अल्लाह ताला को याद करता है, तो अल्लाह ताला भी अकेले में उसको याद करते हैं। जब मजमे में अल्लाह ताला को याद करता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं उनमें अल्लाह ताला को याद करता है, तो अल्लाह ताला इससे बढ़ के अच्छी महफिल में उस इंसान का जिक्र करते हैं, फरिश्तों की और शुहदा की मजलिस में अल्लाह ताला इस इंसान को याद करते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान ने जो अल्लाह को याद किया ना, वैसे तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला की हर वक्त तस्बीह करते हैं, मगर जो आप तस्बीह करेंगे ना वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। वजह क्या है? फरिश्ते तो हमसे बहुत ज्यादा अच्छी तस्बीह करते हैं, हमारी तस्बीह इतनी प्यारी क्यों है? इसलिए कि हमारी तखलीक अल्लाह ताला ने ऐसे की है ना कि हमारे अंदर अतात का भी जज्बा है, नाफरमानी का भी है, दोनों चीजें हैं। फअल्हमहा फुजूरहा तक्वाहा, दोनों चीजें हमारे अंदर, बुराई का मादा भी है भलाई का भी है। ऐसे वक्त में جبکہ انسان کچھ برا بھی کر سکتا ہے، اسی زبان سے آپ غیبت بھی کر سکتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اسی زبان سے لغویات بھی، کیا کچھ مطلب فضول باتیں بھی کر سکتے ہیں، مگر اس وقت آپ نے اپنی زبان کو ان باتوں سے روک کے ذکر میں لگایا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں اور فرشتوں پہ میں فخر اس لیے کرتے ہیں، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اب فرشتوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہا تھا نا، اب دیکھو یہ بندہ تو میرا ذکر کرنے والا ہے، ہر وقت میری یاد میں لگا رہتا ہے، اور ویسے بھی فرشتوں کی تو عبادت کیسی ہے کہ وہ دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے لیے یہ سب چیزیں جنت جہنم یہ سب غیب نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اسی لیے ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے صحابہ جمع تھے تو آپ نے فرمایا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہے، سارے عمل جتنے بھی ہیں ان میں بیسٹ ہے اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھ کے ہے، صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں، آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا یہ جیسے ہر چیز کی کوئی میل کچیل صاف کرنے کے لیے آپ کوئی چیز یوز کرتی ہیں، کوئی ڈیٹرجنٹ، کوئی صابن، کوئی کچھ، تو یہ دلوں کی صفائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہے، تو ہم جیسے ابھی الحمدللہ آہستہ آہستہ عادت بنا رہے ہیں، اپنی روٹین بنا رہے ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرنا ہے، چاہے ہم خوشی کی حالت میں، کبھی کوئی پارٹی ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی اس طرح سے کوئی اور فنکشن ہے، یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی پریشانی کی بات ہے، پریشانی میں تو اکثر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں، مگر خوشی کے موقع پر اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، حالانکہ دیکھیں حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھے مشقتوں میں اور تکلیفوں کے وقت میں کام دے گا، دیکھیں آپ اس وقت کام دے گا، کیونکہ جب انسان خوشی کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جب اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے آپ کو، مگر پھر بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے، جب وہ انسان پھر تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے، یہ تو ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں، لیکن جب انسان خوشی کے وقت میں تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، صرف تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے، بالکل یعنی یوز ٹو نہیں ہوتے نا اس کے، کہ یہ تو ایک نئی آواز ہے، اور یہ آپ کو نفاق سے بھی بری کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر ہے نا منافقت سے بھی بچاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی تو اگر آپ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے تو دل مر جاتا ہے، اچھا آواز اچھا نہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے کر جائے، مگر جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں کو جس ایک چیز پہ، ایک چیز پہ جس وقت جس چیز کا ان کو ملال ہوگا، حسرت ہوگی نا، صرف ایک چیز کی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہم وہاں پہ گھر چھوڑ آئے، ہم وہاں پہ اور ہماری جابیں تھیں وہ چھوڑ آئے، وہاں پہ تو بڑے مزے آتے تھے، کسی چیز کو وہ یاد نہیں کریں گے، کسی چیز کی ان کو حسرت نہیں ہوگی، یعنی صرف ایک چیز کی حسرت ہوگی، چاہے جنت میں بھی پہنچ گئے پھر بھی صرف ایک چیز کی حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، وہ ٹائم جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا دنیا میں، کہیں گے ہائے اس وقت کیوں نہ ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، कितना अच्छा होता अगर हम उस वक्त भी अल्लाह ताला का जिक्र कर लेते। तो अल्लाह ताला का जो जिक्र है ना, वो इंसान को उसके मर्तबे को बुलंद कर देता है, ऊपर कर देता है। अल्लाह ताला उसके ऊपर फखर करते हैं, देखो इस वक्त में ये कितने और काम कर सकता था। इस वक्त यानी किस लिए अल्लाह ताला उसको कर रहे हैं, फखर कर रहे हैं कि इसके बावजूद कि शैतान इनके पीछे लगा हुआ है, दुनिया की जरूरतें हैं और बहुत और दुनिया के काम हैं और इसके पास जुबान है, इससे बहुत कुछ और कर सकता है, मगर फिर भी ये मेरा जिक्र कर रहा है। इसने किस चीज को प्रेफर किया, मेरे जिक्र को। तो आप अगर ये मकाम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पर फखर करें, तो फिर इंशाल्लाह उसका जिक्र जारी रखना है। क्योंकि हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे, हर वक्त। और अल्लाह का जिक्र करने से आपके दिल को सुकून भी मिलेगा। जिन लोगों को भी कोई डिप्रेशन की बीमारी है या कोई और एंजाइटी रहती है ना, तो वो ये करके देखें, ये एक मेडिकेशन के तौर पे करके देखें। यकीन करें कि इंशाल्लाह ताला ये सारी जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां ना, ये दूर हो जाएंगी। और मोमिन और मुनाफिक में फर्क ही ये करता है जिक्र अल्लाह। तो अल्लाह के जिक्र के लिए जरूरी नहीं है कि हम मुसल्ले पे ही खड़े हों। ये जिक्र आप किसी वक्त पे भी, चाहे आप यानी वजू की हालत में है, बगैर वजू के हैं, किसी हालत में भी है ना, आपको इंशाल्लाह उतना स्पेशल कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां पे भी आप हैं, सिवाय टॉयलेट में, उसके अलावा आप जहां पे भी हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। ना उसमें पाकी ना पाकी का कोई वो है, ना आपको वजू या उसकी कोई जरूरत है, ना आपको कोई मुसल्ले की जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत नहीं। चाहे तो दिल में करते रहें, बस इंशाल्लाह कहना, ये क्या है, ये अल्लाह का जिक्र ही तो है। माशाल्लाह कह देना, बात बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, मसलन कोई भी चीज शुरू करने लगे बिस्मिल्लाह कह देना, ये सब अल्लाह के जिक्र ही तो है। कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको काम बता रही। कोई भी काम करें, आपने उसके पहले उसकी मसनून दुआ पढ़ ली, आप रेस्टरूम जा रहे हैं, आप घर से निकल, ये सब क्या है, सवारी पे सवार हो रहे हैं, आप उसमें दुआ पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, अल्लाह के जिक्र ही तो है। तो मुश्किल काम नहीं है ये, कि अगर आप समझे कि पता नहीं मैं आपको कितने बड़ा मुश्किल काम दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बहुत आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि कब्र के अजाब से उनको निजात मिल जाए, तो वो तो ये जरूर करें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के जिक्र से बढ़ के किसी आदमी का कोई अमल अजाब कब्र से ज्यादा निजात देने वाला नहीं है। कब्र का अजाब में सबसे ज्यादा ये हेल्प करता है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम जब अपने घरों में अल्लाह का जिक्र किया करेंगे, अपनी मजलिसों में किया करेंगे, हमारे लिए ये मजलिसें भी हसरत नहीं बनेंगी। वरना क़यामत के दिन वो मजलिसें भी हसरत बन जाएंगी जहाँ पे अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ। जिस जगह पे आप बैठे, वो जगह आपके लिए हसरत बन जाएगी जहाँ पे आपने बैठ के अल्लाह का जिक्र नहीं किया। और जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, वो आसमान वालों में ऐसा खूबसूरत चमकता है, जैसे हमारे लिए जमीन वालों के लिए सितारे चमकते ना, इस तरह वो घर आसमान वालों के लिए चमकते हैं जिनमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तुम में से आजिज हो, यानी कि बेचारा इतना नहीं कर सकता कि रातों को कोई मेहनत करने से और बुखल की वजह से माल भी खर्च नहीं किया जाता उसे, यानी कोई नफली सदके भी नहीं कर सकता, रात को उठ भी नहीं सकता, और बुजदली की वजह से जिहाद में भी शिरकत नहीं कर सकता, इसको चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करे। चलो और कुछ नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है। तो अबू उमामा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जब भी आप अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। तो उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम्हारे लिए भी वो दुआ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, किस तरह से? तो इन्होंने जवाब दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, ये आयत पढ़ी, क्या ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा। तो यानी अगर जिक्र करोगे, जितना ज्यादा तुम जिक्र करोगे, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला की रहमत आएगी। और शैतान भी इंसान के जो यानी करीब रहता है उस वक्त तक जब तक कि वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा होता, उस वक्त तक उसके ऊपर हमले करता रहता है, लेकिन जो ही वो अल्लाह का जिक्र स्टार्ट करता है तो पीछे हट जाता है, गाफिल दिल में ही वसवसे डालता है ना, बार बार आता है, बार बार कोई चीज दिल में डालता है। अब इसकी कुछ लोग कहते हैं कि जी फलां जिक्र बड़ा गर्म है तो ये जिक्र नहीं करना और ऐसे नहीं करना और इसकी इतनी तादाद नहीं करनी, ऐसी कोई भी बात नहीं। आप कोई भी जिक्र जो भी आप करना चाहें जितनी दफा मर्जी करें, कोई ऐसा हदीस के अंदर नहीं है इंडिकेशन ये गर्म है और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से हमने खुद ही बना लिए हैं। ये भी देखे ना, शैतान ने दिमाग में डाला, उस ज्यादा ना कर लेना, बहुत गर्म है, पता नहीं क्या तुम्हारे ऊपर असर हो जाएगा, ऐसी कोई भी चीज हदीस से नहीं मिलती। हाँ ये है कि कई चीजों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, भाई ये इतनी दफा पढ़ा करो, ये इतनी दफा पढ़ो, तो इस तरह से बताया, मगर ये नहीं मना फरमाया कि इससे ज्यादा ना पढ़ना, इससे एक भी ज्यादा पढ़ लिया तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। तो इसकी कोई हद नहीं है मुकर्रर कि आप कहें कि भाई इतना ही पढ़ना है, चाहे आप लाखों दफा पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सफर में पढ़े, या आप घर में पढ़े, आहिस्ता से पढ़े, जोर से पढ़े, हर हालत में आप कर सकते हैं। तो हजरत हाफिज बिन हजर फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है, मुझे हैरत है उस इंसान पे कि जो अल्लाह को जानता हो फिर भी उसका जिक्र नहीं करे, किसी और चीज का जिक्र करे, कि जिसने रब को पहचान लिया फिर तो उसके मुंह से हर वक्त उसी की याद रहनी चाहिए, उसी का जिक्र रहना चाहिए। और अल्लाह ताला अपनी अर्श का साया भी जिन 7 लोगों को देंगे ना, उनमें एक वो भी है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंसू बहने लगे। तो जब इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला को याद करेंगे, कभी ये हो सकता है कि आंसू भी बहे, तो अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा ऐसे लोगों को जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और हम तो पढ़ रहे हैं ना आजकल, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़ अस्समावाति वल अर्ध, आले इमरान का आखिरी रुकू कर रहे हैं ना, वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं कैसे, खड़े बैठे लेटे, यानी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं और गौर व फिक्र भी करते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश में। जब जिक्र करेंगे तो गौर व फिक्र भी होगा, गौर भी करेंगे, गौर व फिक्र करना भी क्या है, अल्लाह को याद करना ही है ना। आप गौर कर रहे हैं, अल्लाह तूने कैसे ये आसमान जमीन ये चीजें बनाई, तो फिर एकदम दिल से निकलता है ना सुभान अल्लाह। और जो आप दिल ही दिल में करें, लेकिन जिक्र 2 तरह के ना, एक तो आप दिल ही दिल में करते हैं वो भी जिक्र है, वो भी बहुत अच्छा है, एक आप जुबान से करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, जैसे भी आप कर रहे हैं, मगर अल्लाह की याद जरूर होनी चाहिए, अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो। अल्लाह ताला के जिक्र करने में इतनी सारी रिवायात है ना, वो तो मैं पूरी नहीं कवर कर सकती, मगर मैं आपको ओवरव्यू एक दे सकती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है, कि इसका फायदा आपको क्या होगा। अगर आप कोई लिखना चाहें, आप इसका फायदे लिखते हैं और उसके बाद फिर बताएं कि किसी और चीज का इतना फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि शैतान जो होता है ना, इसको दूर कर देता है, उसकी ताकत को तोड़ देता है अल्लाह का जिक्र। फिर अल्लाह ताला खुश होते हैं उस इंसान से, अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब बनता है। फिर आपके ये जो मैंने जैसे बताया कि दिल से गम फिक्र परेशानियां, ये डिप्रेशन, ये सब चीजें निकल जाती हैं, दिल मुतमईन हो जाता है, सुकून मिल जाता है दिल को। फिर आपका चेहरा भी आप देखेंगे, इस पर नूर आ जाएगा। तो अगर आप नूरानी चेहरा चाहते हैं ना, तो अल्लाह का जिक्र करें। फिर कौन नहीं चाहता कि उसका रिस्क बढ़े, रिस्क को भी खींचता है, रिस्क को भी लेकर आता है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करता है। क्योंकि एक जगह पे आता है कि जो इंसान भी ये चाहता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत तक इसकी रसाई हो, इसको चाहिए कि उसके जिक्र की कसरत करे, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र किया करे। तो समझ लें कि एक मोहब्बत का ये दरवाजा है अल्लाह का जिक्र। फिर जितना अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा करता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है, और जितना जिक्र से गफलत करता है ना उतना ही अल्लाह ताला से दूर होता जाता है। तो हम क्या चाहते हैं अपने लिए, और अल्लाह की बड़ाई उस दिल में पैदा हो जाती है, फिर आपका दिल जिंदा हो जाएगा, मुर्दा नहीं रहेगा। और फिर ये जो जिक्र है ये रूह की समझ लें गजा है, रूह को सुकून मिलता है इससे। फिर दिलों की भी सफाई हो जाती है, दिल का जंग दूर हो जाता है। फिर आपकी जो है गुनाह कोताहियां बख्शिश हो जाती है उनकी, अल्लाह ताला बख्श देते हैं। और जो गाफिल दिल है ना उसके ऊपर एक वहशत सी तारी रहती है, ये जो डिप्रेशन वगैरह एंजाइटी क्या है, वहशत ही तो है, तो ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी इससे। फिर जो आप जिक्र करते हैं वो अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंच जाता है और फिर चारों तरफ उसके घूमता है और उस बंदे का जिक्र करता है जिस बंदे ने उसको पढ़ा होता है। फिर इंसान अगर अच्छे हाल में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला मुसीबत में उसको याद रखते हैं, बताएं आसानी में अल्लाह ताला को याद रखेंगे तो अल्लाह ताला मुसीबत में आपको याद रखेंगे। फिर इसी तरह सकीनत तारी होती है, सुकून मिल जाता है, रहमत उतरती है, फरिश्ते ऐसी महफिल को घेर लेते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है। और आप देखिए सबसे बड़ी ये बात कि जब आप अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं ना तो आपकी जुबान और बेकार चीजों से महफूज रहती है। जैसे हमने अभी बात की कि ना कोई बदगोई करेंगे, ना कोई इधर उधर की बातें होंगी, आप अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं तो उनसे भी बच गए। अब क्यामत के दिन जो हसरतें हैं उनसे भी आप महफूज हो गए जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। अच्छा, अब ये हालांकि सबसे आसान इबादत है मगर बहुत अफजल है, ये तो जुबान को हरकत देना कौन सा मुश्किल है। देखिए ना, आप ना कोई उठना पड़ रहा है, ना कोई वजू करना पड़ रहा है, ना कोई मुसल्ले पे खड़े होना पड़ रहा है, ना कोई भूखे रहना पड़ रहा है, कोई और इबादत में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रगल नहीं है। जुबान चलाना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, सारा दिन भी जुबान हमारी चलती रहती है, कोई थकते नहीं है हम। तो ये जो जिक्र करना है बहुत फजीलत वाली इबादत है मगर सबसे आसान है, और ये जन्नत के पौधे हैं। जब जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं ना जन्नत में आपके लिए एक दरख्त लग जाता है। और कई जिक्र हैं उनकी बेशुमार और भी फजीलतें हैं कि इतने इतने समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हैं तो वो भी माफ हो जाएंगे। फिर इंसान अल्लाह ताला के अजाब से बचा रहता है, कब्र के अजाब से बचा रहता है। और फिर इसके अलावा अल्लाह ताला का जिक्र जो गुलामों को आज़ाद करने के और माल के खर्च करने के और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने के से भी ज़्यादा फजीलत रखता है, जैसे मैंने अभी आपको हदीस बताई है। इसी तरह जो शुक्र अदा करना चाहता है, आप में से कोई चाहता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे तो वो भी जिक्र के बगैर नहीं कर सकता। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया था कि अल्लाह आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, मुझे तरीका बताएं कि मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जितना भी तुम मेरा जिक्र करोगे उतना ही शुक्र अदा करोगे, उतना ही शुक्र अदा होगा जितना जिक्र आप ज्यादा करेंगे। तो अगर आप शुक्र भी अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जिक्र करना जरूरी है। तो और जो इंसान ये चाहता है कि दुनिया में रहते हुए जन्नत के बागों में सैर करे तो वो जिक्र की मजलिसों में जाया करे, क्योंकि ये मजलिसें जो है ना वो जन्नत के बाग है। और फिर आपके आप यहाँ पे दुनिया में बैठे हुए उधर आसमानों पे आपका जिक्र हो रहा है, फरिश्तों में आप पे फखर हो रहा है, इससे ज्यादा क्या और फजीलत वाली बात हो सकती है। इसी तरह आप कोई भी अगर इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, कोई भी इबादत करते हैं उसमें भी, या कोई जिहाद पे जाता है उसमें भी सबसे अफजल इबादत वो होगी जिसमें अल्लाह का जिक्र ज्यादा होगा। मसलन आप हज पे गए, जिस हज में आपने अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा किया वो हज उससे अफजल है जो दूसरों ने किया है बगैर अल्लाह के जिक्र। इसी तरह आपने रोजा रखा, रोजा इट सेल्फ एक इबादत है, मगर जिस रोजे में अल्लाह का जिक्र आया वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा फजीलत वाला है, उसका अजर ज्यादा है। तो यानी अमाल में भी अफजल अमल वो हो जाता है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, जो भी आपकी कोई इबादत है। इसी तरह आपको जैसे मैंने बताया कि दिल से खौफ भी दूर हो जाता है, अगर आप डरे हुए हैं किसी चीज से तो उसमें भी आपको इत्मीनान मिल जाता है, आपको एक स्ट्रेंथ देता है अल्लाह ताला का जिक्र, इंसान को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और इनके लिए जिक्र करने वालों के लिए फरिश्ते इस्तग़फार करते हैं। देखिए एक जगह पे आता है ना कि जब सुभान अल्लाह व बिहम्दी इंसान कहता है या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा देना। और दुनिया और आखिरत में ऐसे इंसान के चेहरे पे नूर रहेगा, और ये ऐसे इंसान के लिए कयामत के दिन, यानी ये जो चीजें गवाही देने वाली है ना, सूरह ज़िलज़ाल में आता है यौम इज़ तो हद्दिसु अखबार रहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। तो खबरें क्या हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा ये खबरें क्या हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि जिस मर्द और औरत ने जो काम जमीन पर किया है वो बताएगी कि फलां दिन फलां वक्त में मुझ पर ये काम किया हुआ। अब आप देखें कि जब आप जिक्र कर रहे होंगे तो ये दीवारें, ये जमीन, ये हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, जो पत्थर हैं, गारा है, मट्टी है, दरख्त हैं, पौधे, ये सब चीजें हमारे लिए गवाही देंगी उस दिन कि ये मेरे करीब अल्लाह का जिक्र करती थी, ये जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूं ये गवाही देगी। सोचिए कितने सारे आपके गवाह हो गए, कयामत के दिन आपके हक में गवाही देने वाले बढ़ जाएंगे। तो हमने इंशाल्लाह ताला इसको एक बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं, शैतान शायद आपके जहन में डाल रहा हो कि बड़ा मुश्किल है, आप क्या हम हर वक्त क्या तस्वीर पकड़ के बैठ जाएंगे या क्या करेंगे, नहीं इंशाल्लाह ताला हम इसके लिए भी प्लान करेंगे कि हम किस तरह ये करें। मगर पहले तो ये है कि इंशाल्लाह आप नियत ये कर लें कि हम अब से ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। रमजान के लिए हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस ये होगी, सबसे आसान चीज से हम शुरू कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए कोई भी आपको स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं है, मगर इंशाल्लाह हम ये शुरू करेंगे जिक्र करना। ये इसलिए भी है कि हम जब रमजान स्टार्ट करें तो उस वक्त ये ना हो कि जब मैं आपको कोई जिक्र बताऊं तो अब आपको सारा दिन याद ही ना रहे, वो इफ्तार के वक्त याद आया या एक किसी और वक्त में याद आया, पूरा दिन जिक्र करना भूल ही गया क्योंकि हम यूज्ड टू ही नहीं होते। अच्छा अब प्लान कैसे करें कि किस तरह से हम जिक्र कर सकते हैं सारा दिन, तो आपको एक तरीका बता देती हूँ। अब ये कोई, मगर उससे पहले सबसे ये बात समझ लें कि ये कोई हदीस में नहीं है, ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, ना ही कोई कुरान में है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए ताकि हमें याद रह सके। वो ये कि हम अपने दिन को जैसे जैसे नमाजें हैं हमारी तो हम पांच हिस्सों में डिवाइड कर लें। आप कुछ और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे ही तरीके पे चलें, मगर आप ये कर सकती हैं कि मैंने इस वक्त में ये जिक्र करना है। अब आप उस तरह से सारे जिक्र इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सब जिक्र आपके कवर हो जाएंगे। मैं आपको एक पैटर्न दे सकती हूँ, आप फिर अपनी आसानी के मुताबिक जैसे आपकी सहूलत हो उस तरह से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फजर से जोहर तक मैंने रख लिया सबसे अफजल तरीन जो जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं चूंकि ये बेहतरीन जिक्र है, हदीस में आता है कि बेहतरीन है, और जिस इंसान का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा, ये हदीस है। तो फजर से जोहर तक का मैक्सिमम टाइम होता है तो ये मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए रख लिया। फिर जोहर से असर तक मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि दुरूद शरीफ के लिए रख लिया, और मैंने आपको इसकी फजीलत भी बताई थी कि बहुत ही ज्यादा इसकी फजीलत है। सबसे पहले तो ये कि कयामत के दिन शिफात उसको नसीब होगी, जो कसरत से दुरूद पढ़ता होगा, फिर ये दुरूद ले जाया जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने पेश किया जाता है, इस बंदे ने फलां बंदे ने आपके लिए ये दुरूद भेजा, ये 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह बख्शे जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, बहुत ही ज्यादा फजीलत है इसकी। तो ये पढ़ सकते हैं या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, ये 100 दफा पढ़ने का है, तो हम पढ़ते जाएं इंशाल्लाह 10 गुलाम आजाद करने का सवाब है, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, शाम तक इंसान शैतान से महफूज रहता है। कितनी आसान से चीजें हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें कितनी छोटी छोटी चीज के ऊपर कितने बड़े बड़े अजर की हमें खुशखबरी दी है, कितने बड़े बड़े अजर हमारे लिए रखे हुए। इसी तरह हम कर सकते हैं कि असर से मगरब तक मसलन सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अलअजीम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि दो कलमात हैं जो जुबान पे बहुत आसान है लेकिन मीजान में बहुत भारी हैं, ये बड़े भारी कलमे हैं मीजान में। अब गरम की तो बात कहीं नहीं आती, भारी की जरूर आती है कि ये वजनी कलमे हैं। मगर ये अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पे मगरिब से इशा तक हमने सोच लिया कि हम सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ा करेंगे, ये हर कलमा ये जो है ना सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसे एक दरख्त लगता है जन्नत में आपके लिए। और तो ये भी है कि एक दफा कुछ फकीर मुहाजरीन जो आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो वो कहने लगे या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मालदार जो है ये तो सारे बुलंद दर्जे इन्होंने ले लिए, हमेशा की रहने वाली नेमतें इन्हीं के हिस्से में आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किस तरह से, उन्होंने अर्ज किया कि नमाज रोजे में तो ये हमारे साथ शरीक हैं ही, वो तो ये हम भी करते हैं वो भी करते हैं, मगर मालदार होने की वजह से ये लोग सदका करते हैं गुलाम आजाद करते हैं और हम इन चीजों से आजिज है, को पकड़ लो और बाद वालों से भी आगे बढ़ो, और कोई शख्स तुमसे इस वक्त तक अफजल ना होगा जब तक इन्हीं अमाल को ना करें, ये इतने बड़े अमल हैं। सहाबा ने अर्ज किया जरूर बताएं, आपने फरमाया कि हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये 33-33 दफा पढ़ लिया करो। मालदारों ने भी ये बात सुन ली, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो बोले तो खैर इस नेकी की दौड़ में इतने आगे बढ़ने वाले थे ना कि उनको जरा सी बात भी पता चल जाती थी तो वो आगे बढ़ के करते थे, क्योंकि इससे पढ़ने से भी गुनाह माफ होते हैं। एक हदीस में तो इतना आता है कि इतने गुनाह माफ होते हैं कि समुंदर की झाग के बराबर भी हो तो वो भी माफ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए इतनी सहूलतें रखी हैं, मगर अगर हम ही अवेल ना करना चाहें, देखिए कितनी आसान बात है ना, सारा दिन में ये करने कौन से मुश्किल है, मगर वो ही है कि हम बस हमारी गफलत है सुस्ती है, तो ये ना हो कि हम जन्नत में पहुंच भी जाएं तो वहां पे भी हमें हसरत है कि आई हम अल्लाह को याद ही कर लेते, कितना आसान ही तो था, बेकार बातों में तो मैं इतनी जुबान चलाती थी, मैंने अल्लाह ताला को क्यों ना याद किया। फिर हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कर लिया करें, पूरा दिन आपकी जुबान पे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बात आप किसी से कर रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमात जारी रहने चाहिए। फिर इसी तरह मिसाल के तौर पर इशा आपने पढ़ ली, तो अब उसके बाद आप कोई भी एक जिक्र रख सकते हैं, मसलन है अस्तग़फिरुल्लाह का, अस्तग़फिरुल्लाह ये अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है, फिर आप अपनी बख्शिश भी मांग रहे हैं और इसकी भी बहुत फजीलत है। अभी तो वक्त नहीं है तो इस्तग़फार करने का, मगर ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो आप ज़रूर जैसे आपकी मर्जी है उस तरह से आप अपने डे डिवाइड कर लें। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप आज के दिन का एक जिक्र रख सकते हैं कि आज के दिन मैं ये करूँगी कल मैं ये करूँगी, मगर अगर इस तरह से भी कर लें जैसे मैंने आपको बताया तो सारे एक दिन में इस बहुत सारे भी कवर हो जाएंगे, याद भी रहेगा कि अच्छा अब मैंने आज इस वक्त में ये जिक्र करना था। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने रूटीन अपनी बनानी है, इस महीने का हमारा ये टारगेट है और हमने टारगेट मीट करना है, ठीक है 100% की का गोल बनाएं, ये करें कि मैं 100% इसको इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट होगा, तो फिर कहीं हम जाके मे बी 90% 70% तक कर सके, मगर कोशिश ये करनी है कि हाँ ये मैं पूरा पूरा अमल करूंगी, नियत ये कर लें इंशाल्लाह, नियत का तो अजर पा लेंगे आप, ठीक है। अच्छा फिर कुरान पाक के हम दो रुकू कर रहे थे, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको जरा बढ़ा देते हैं क्योंकि रमजान नजदीक आ रहा है ना, तो अब तो आपके माशाल्लाह दो रुकू में स्पीड हो चुकी होगी, तो अब इंशाल्लाह ताला हम चार रुकू पढ़ा करेंगे। एवरी डे चार रुकू पढ़ के हमने सोना, अगर सुबह में नहीं पढ़ सके, देर हो रही थी, स्कूल का टाइम था, कुछ भी नहीं उस दिन पढ़ सके, दिन में कोई भी टाइम निकालें कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, चार रुकू मैंने अपने फिनिश करने, ठीक है। अब पूरा दिन गुजर गया आपको वक्त नहीं मिला, रात को जो नींद का टाइम होता है ना वो तो हमारा अपना है ना, वो तो किसी और का नहीं है ना, तो जहां आपने मसलन 10 बजे सोना था, कोई नहीं आप 10:15 सो जाए, ठीक है, मगर वो चार रुकू मुकम्मल करके हमने सोना है, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी दुआ में इस दफा की हमारी दुआ इसी से रिलेटेड है, रब्बी आइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, अल्लाह मेरी मदद फरमाना अपना जिक्र करने में, अपना शुक्र करने में और तेरी अच्छी इबादत करने में मेरी मदद फरमाना। हम अच्छा अच्छा जिक्र भी कर सके, जिक्र की बात हुई ना आज, शुक्र भी कर सके, अच्छी सी इबादत भी कर सके। इसके अलावा इंशाल्लाह जिन जिनको दुआ कुनूत नहीं याद है, दुआ कुनूत याद करें, रमजान से पहले इंशाल्लाह करनी है, हम नेक्स्ट कुछ सेशंस में इस पे भी बात करेंगे, दुआ पे भी, नमाज पे भी, और मसनून दुआओं में से भी कोशिश करें कि हर हफ्ते एक एक दुआ याद कर लें, बहुत फायदा देगी इंशाल्लाह आपको रमजान में। तो अल्लाह ताला हमें वो वक्त नसीब करे और ऐसा नसीब करे कि हम उससे भरपूर फायदा उठा सके इंशाअल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।